ओम शांति। आदरणीय गीता दीदी जी का हम सभी करतल ध्वनि के साथ स्वागत करते हैं। गीता दीदी के क्लास का विषय ही है त्याग तपस्या में फॉलो ब्रह्मा बाप। आप सभी सदा मुरली में सुनते ही हैं कि फॉलो फादर, तो फॉलो फादर कौन? जिस प्रकार ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा की हर शिक्षाओं को फॉलो कर सिखाया है, हम भी उसी प्रकार त्याग तपस्या करें। इस विषय पर बहुत सुंदर तरीके से कैसे हमको फॉलो करना है आदरणीय गीता दीदी जी सुनाएंगे। आदरणीय दीदी का जैसा नाम है वैसा ही कार्य है। गीता में एक वाक्य आता है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, फल की इच्छा न कर कर्म करते जाओ। श्रीमद् भगवद गीता की यही मूल शिक्षाएं आपका वास्तविक जीवन परिचय है। 1969 में आप 14 वर्ष की अल्पायु में ही प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के संपर्क में आई। आपने अपने विद्यार्थी जीवन में भी अत्यंत मेधावी छात्रा रही। 1972 में बोर्ड में प्रथम स्थान प्राप्त करने के पश्चात ही अपने जीवन को ईश्वरीय सेवा में संपूर्ण रूप से आपने समर्पित कर दिया। गुजरात के सूरत, भरूच, बड़ौदा, अहमदाबाद आदि स्थानों पर अपनी सेवाएं प्रदान करने के पश्चात लगातार 14 वर्षों तक भावनगर में सब जोन इंचार्ज के रूप में आपने अपनी सेवाएं प्रदान की। वर्तमान समय आप मधुबन में अपनी सेवाएं दे रही हैं। आप राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के अंतर्गत बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज विंग के हेडक्वार्टर के कोऑर्डिनेटर हैं। आप एक कुशल राजयोग एवं स्वप्रबंधन प्रशिक्षक भी हैं। आप यूएसए सहित विभिन्न देशों का भ्रमण कर अपनी सेवाएं प्रदान की है। दीदी जी के लिए मैं दो शब्द कहूंगी, दृष्टि से सब हो जाते हैं निहाल, ज्ञान से सब हो जाते हैं माला माल, भटकी दिशाएं भी राह पा लेती हैं, सानिध्य से सब हो जाते हैं खुशहाल, सब हो जाते हैं। आदरणीय गीता दीदी, ओम शांति। लास्ट मुरली में प्यारे बाप दादा ने ये बात हम सबको कही थी, आप सबको भी याद होगा। पिछले ग्रुप में लगभग 28,000 से अधिक भाई बहने थे और काफी लोगों को टेंट में बगीचे में रहना पड़ा था, तो उन्हों की सहन शक्ति की महिमा करते हुए बाबा ने कहा था कि ये तो बहुत अच्छा किया, कमाल किया, लेकिन अब कम से कम ब्रह्मा बाप समान त्याग तपस्या और सेवा में फॉलो करो, तो ये मंजूर है, तैयार हो। दो दो हाथ बाबा ने उठवाए थे। हम सब ने बाबा के ज्ञान को समझकर त्याग और तपस्या की राह को ही अपने जीवन के लिए स्वीकार किया है। संसार में भोग मार्ग है, जहां इंसान केवल स्वयं के इंद्रिय और दैहिक सुखों के बारे में ही सोचता है और उसे पाने में ही लगा रहता है, और उससे भोगने में ही उससे आनंद आता है। और हम जानते हैं कि ये कलयुग अंत का समय है, संसार अति की स्थिति पर पहुंच गया है, जहां माया का भी, विकारों का भी, भौतिक, दैहिक, सांसारिक आकर्षणों के हिसाब से भी अति भपका है। ऐसे समय में बाबा ने जो ज्ञान दिया है, उस ज्ञान को समझकर, ज्ञान तो बहुतों को दिया जाता है, लेकिन हम वो सब विशेष आत्माएं हैं जिन्होंने ज्ञान को समझकर जीने का मार्ग बदल लिया है, भोग मार्ग से हम योग मार्ग, त्याग मार्ग, तपस्या के मार्ग पर है। तो ये हमें नित्य याद रहे कि जब से हम बाबा से जुड़े हैं, यज्ञ से जुड़े हैं, ये बैज लगाया है, सफेद ड्रेस हमने पहनी है, ये त्याग की सूचक है। और भारत देश में जो भी आध्यात्मिक लोग हैं, उनसे यही अपेक्षा रखी जाती है कि धार्मिक आध्यात्मिक व्यक्ति माना उनके जीवन में त्याग तपस्या दिखनी चाहिए, दिखनी चाहिए। और ये सही भी है कि अगर मुझे अपनी आध्यात्मिक उन्नति करनी है तो मुझे भौतिक कामनाओं को सीमित करना चाहिए। अगर मुझे इस देह और देह की दुनिया से परे रहने वाले परमात्मा से मन बुद्धि लगाने हैं तो जीवन में इतनी पवित्रता, संयम, सादगी, सरलता हो कि बुद्धि योग दुनिया की बातों में न जाए, माना परमात्मा से मन हटने के कारण जीवन में न रहे। इसलिए भल हमारे त्याग, तपस्या और सेवा का फल इसी जन्म में बाबा हमें दे देते, ऐसा नहीं है सिर्फ भविष्य 21 जन्मों की प्राप्ति, संगम युगी जीवन में ही भगवान हमारे त्याग, तपस्या, सेवा का
अनेक गुना रिटर्न दे देता है। उसके बीच भी मुझे मेरा जीवन त्याग तपस्या से भरपूर और सेवा में लगा हुआ बनाना है। इसलिए अगर ये लक्ष्य रोज हमें याद रहेगा, बाबा भी कहते हैं अभी तुम विश्व सेवाधारी, अभी तुम विश्व राज अधिकारी रहे हो, वो भविष्य में बने। और सेवा शब्द को ही बार बार आप सोचिए कि सेवा माना ही विनम्रता, समर्पण, त्याग, सेवा में ये सब कुछ आ जाता है। और हमारे सामने ब्रह्मा बाप एग्जाम्पल है। व्यक्तिगत जीवन ब्रह्मा बाबा की और उनके तैयार की हुई दादियों की अगर हम देखते हैं कि व्यक्तिगत जीवन त्याग तपस्या से भरी हुई रहे। भल बाबा हमें कहते हैं खाओ पियो घूमो फिरो, बाबा मना नहीं करते हैं, साकार मुरली में महावाक्य आता है, लेकिन करके बाबा कहते हैं खाओ पियो घूमो फिरो लेकिन बाबा की याद में। इसलिए जो खाना, जो पीना, जो घूमना, जो फिरना बाबा की याद भुलाता हो तो वो हमें नहीं करता। उस सीमा तक, उस सीमा तक मुझे खाना पीना घूमना फिरना पहनना ओढ़ना भोगना है जिसमें मेरी तपस्या अखंड रहे। तपस्या कौन सी है? तपस्या हमें कौन सी करनी है? पहली है देहभान से न्यारा रहने की, जिसके लिए बाबा रोज कहते देही अभिमानी बनो, अशरीरी बनो। हमारी पहली तपस्या देह भान से न्यारा, आत्मभिमानी स्थिति की तपस्या। दूसरी तपस्या है मन वचन कर्म से एक बाप दूसरा न कोई। सिर्फ मन से नहीं, सिर्फ विचार में नहीं, कर्म में भी एक बाप। माना मेरे आकर्ष क्षण या आसक्ति में और कोई नहीं, मेरा सर्वस्व एक बाबा और उनसे ही मेरा सब कुछ। दूसरी तपस्या ये, तीसरा है, इस दुनिया में रहते हुए भी सदा ऊपर रहना, मूल वतन में रहे या सूक्ष्म वतन में रहे। मुझे बुद्धि से वहां रहना है, बातें नीचे लाएंगे, लेकिन तपस्या माना, तपस्या किसको कहा जाता है? जिसके लिए दृढ़ संकल्प से मेहनत की जाती है उसको तपस्या कहते हैं। भाई ये चीज पाने के लिए मैंने बहुत तपस्या की, मैंने बहुत मेहनत की, पर उसे पाने का दृढ़ संकल्प और लगातार प्रयास, पुरुषार्थ, उसको तपस्या कहते हैं। और चौथी तपस्या है कि ईश्वरीय जीवन के नियम, संयम, मर्यादाएं, अनुशासन श्रीमत में हर कर्मेंद्रिय से चलना, रहना। ये प्रैक्टिकल मनसा तपस्या का प्रैक्टिकल प्रमाण ये है कि मेरा जीवन, कर्म, व्यवहार, वाणी सब ईश्वरीय जीवन के नियम, संयम, मर्यादाएं, अनुशासन श्रीमत में उसके अनुरूप चले। बाबा कहते हैं कर्मेंद्रिय से भूल ना होनी चाहिए, ये हमारा तप है। जैसे वो कहते हैं भी पानी नहीं पीना है 21 दिन, ये हमारा तप है। इस प्रकार अब आजीवन जब से बाबा के बने, अब हमारे मन, वचन, कर्म, नियम, संयम और पांचवी बात है कि प्रैक्टिकल में भले योगी जीवन, ईश्वरीय जीवन, लेकिन प्रैक्टिकल में चूंकि हमारी तपस्या प्रवृत्ति मार्ग की है, कोई अकेले कोने में बैठ के सबसे अलग थलग होकर करने की नहीं है, लौकिक में भी निमित्त रहना है, तोड़ निभाना है, प्लस अलौकिक में भी रहते हुए सेवा और पुरुषार्थ करना है, इसलिए हमारी पांचवी प्रैक्टिकल तपस्या ये है कि यज्ञ की जो व्यवस्था है, कार्य व्यवस्था है, प्रशासनिक जो व्यवस्था है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो हमारा स्ट्रक्चर है, हेडक्वार्टर है, फिर जोन हेडक्वार्टर है, सब जोन हेडक्वार्टर है, ग्रुप सेंटर हेडक्वार्टर है, सेंटर, सब सेंटर, पाठशाला, ये हमारा प्रशासनिक ढांचा है। इस व्यवस्था में बंद कर चलना, इस व्यवस्था के अनुसार चलना, ये भी एक तपस्या है। उसके लिए भी हमें बहुत कुछ त्यागना, एडजस्ट करना, समाना, सहना करना होता है, पर ये भगवान की बनाई हुई व्यवस्था है, उसको हमें दिल से स्वीकार करना है। भगवान से जुड़ना माना उसमें सब आ जाएगा ना। ये हमारी तपस्या है, इसके लिए जो कुछ त्याग करना पड़े, क्योंकि बिना त्याग तपस्या नहीं होती है। त्याग से ही तपस्या तेज होती है, पावरफुल बनती है। इसलिए कहते हैं कि योग और भोग दोनों साथ नहीं रह सकते, एक म्यान में दो सलवार नहीं रह सकती, राम और काम दोनों मन में नहीं रह सकते। इसलिए त्याग हमें योग्य बनाता है तपस्या करने के लिए। और जब हम ज्ञान समझते हैं, ऑटोमेटिक वैराग्य आता है। त्याग वैराग्य से होता है। अगर खुद को वैराग्य नहीं तो त्याग मुश्किल लगेगा। जो हम कहते हैं ना कि मैं बार बार छोड़ता हूं फिर आ जाता है, चाहे व्यसन, विकार, संस्कार, आदत, बार बार छोड़ता हूं फिर आता है, क्यों? जिगरी वैराग्य रहे, इसलिए वापस आता है। वैराग्य चाहिए तो त्याग सहज स्वतः हो जाता है, कहने की जरूरत भी नहीं पड़ती। और वैराग्य ज्ञान से उत्पन्न होता है, दुख से नहीं होता है, ये आप समझना। दुनिया में दुखी तो बहुत है पर अभी भी वैराग्य नहीं। जिन बातों से, आदतों से, संबंधों से, व्यक्तियों से, क्रियाओं से दुख मिल रहा है, दुखी है पर अभी भी वैराग्य नहीं है, इसलिए उसी में डूबे रहते हैं, चलते रहते हैं। दुख से वैराग्य नहीं आता, समझ से वैराग्य आता है। इसलिए बाबा रोज समझाते हैं, क्यों इतने सालों से समझा रहे हैं। समझते 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 ही वैराग्य आता है, तब वैराग्य माना जो गलत है, असत्य है, अपवित्र है, असार है, अयथार्थ है, अब वो मेरे जीवन में नहीं रहेगा। वहां से राग हटना, आकर्षण खत्म होना, आप सब अनुभव कर रहे होंगे, क्योंकि हम सब परिवर्तन के प्रक्रिया से गुजर रहे। कई चीजें गलत होते हुए भी हमें उससे वैराग्य नहीं होता है, इसलिए उसमें चलते रहते हैं या चलाते रहते हैं वो बातें। जितना जिगरी वैराग्य, तो त्याग धक से हो जाएगा। मेहनत नहीं, समझाना नहीं पड़ेगा। इसलिए ब्रह्मा बाबा का जीवन हमारे सामने स्पष्ट है। हम सब ने बाबा की जीवन कहानी पढ़ी है। साकार पालना लेने वाले जो भी हमारे बड़े हैं, दादियां, दीदियां, दादाएं, जो भी आदि रत्न, आदि सेवा रत्न, जो भी भाग्यशाली आत्माएं साकार पालना लेने वाले, उनके अनुभव हम सब ने सुने हैं, उनकी किताबें भी बनी हुई है, वो भी पढ़ी होंगी। उसके द्वारा भी ब्रह्मा बाबा हमारी बुद्धि में स्पष्ट है। रोज की मुरली ब्रह्मा बाबा का चित्र हमारे मन में खींचती रहती है, बनाती रहती है, क्योंकि मुरली वो ही है जो ब्रह्मा बाबा ने सोचा और किया, वो ही उन्होंने मुरली में हमें कहा है। इसलिए मुरली भी ब्रह्मा बाबा का चित्र चरित्र स्पष्ट करती है हमारी बुद्धि। इसलिए कोई भी नहीं कह सकते कि हमने बाबा को नहीं देखा तो कैसे फॉलो करें। हम सब ने ज्ञान नेत्र से, विवेक की आंख से बहुत स्पष्ट रूप से बाबा को देखा है, समझा है, जाना है, पहचाना है, अनुभव किया है। बाबा को तो साक्षात्कार होते ही वैराग्य आया और त्याग किया। त्याग के विषय में बहुत बातें हैं, लेकिन पहला कि जो भी विकार है, बुराइयां हैं, कमजोरियां हैं, विकृतियां हैं उनका त्याग, सद्ज्ञान प्राप्त होना माना ही ये अंधकार समाप्त होना। बाबा कहते हैं प्रकाश और अंधकार साथ नहीं रह सकते। सद्ज्ञान का प्रकाश होना माना ज्ञान को समझना निश्चयात्मक रूप से, ऑटोमेटिक ये विकार व्यसन फैशन बुराइयां दूषण कमजोरियां विकृतियां जो भी कहो, ये पहला फर्स्ट स्टेप का त्याग है। ज्ञान पाते ही ये हो जाता है। और मंजिल की ऊंचाई जैसे जैसे हम जानते जाते हैं, अब उसको हम त्याग भी नहीं कहेंगे, क्योंकि बुराइयां तो छोड़नी ही होती है, वो फिर रखने की चीज नहीं है ना। घर से अगर कचरा गंदगी फेंक देते हैं तो हम ये नहीं कहते हैं कि ओहो हो मैंने बहुत बड़ा त्याग किया, पूरा डिब्बा भर के कचरा फेंक के आए, बहुत बड़ा त्याग किया, ऐसा नहीं कहे। हर कोई समझता है कि वो तो फेंकने योग्य ही है, फेंकना ही चाहिए, थोड़ा भी कचरा गंदगी रहेगी तो वो और जम्स पैदा करेगी, पॉल्यूशन होगा, वो तो फेंकना ही चाहिए, वो कोई त्याग की बात नहीं। ये तो दुनिया की कंपैरिजन में, कलयुगी जीवन के कंपैरिजन में हम कहते, पर ये छोड़ना, बुराइयां छोड़ना, वो हमें नया ईश्वरीय जन्म देता है। ज्ञानी तो आत्मा हम बने हैं उसका ये प्रमाण है। बाबा कहते हैं ना समझदार कभी धोखा नहीं खाता, तो उसकी ये निशानी है। बाबा धक से योग्य बन गए। बाबा को कोई समझाने वाला नहीं था, बाबा के सामने कोई एग्जाम्पल नहीं था जिसको देखकर वो परिवर्तन करे। हमारे सामने तो अनेक आदर्श है, तो ये पहला त्याग का पहला स्टेप है। उसके बाद है रियल त्याग, कि सत्य पाने के बाद, भगवान को पाने के बाद, उनके बनने के बाद कितना समय शक्ति तन मन धन साधन गुण कला विशेषता कितना हम बाबा के कार्य में लगाते हैं। माना अपने सुख आराम भूख प्यास मौज उसका हम बाबा के लिए, बाबा के बेहद कार्य के लिए कितना हम उसको लगाते हैं, सेवा में सफल करते हैं। हमारी उपयोगिता कहां तक है। अलौकिक जन्म लेकर लौकिक में ही लगे रहते हैं या अलौकिक जन्म अलौकिक कार्य के लिए हैं, तो उस अलौकिक कार्य के लिए यज्ञ के लिए परमात्मा बाप के साथी मददगार कहां तक हम बनते हैं। जैसे ब्रह्मा बाप ने तो सर्वस्व लगा दिया, पर बाबा का आदेश अब ये है जो गृहस्थ में रहते हैं, बाबा कहते उसमें रहते हुए वो भी संभालना है और यज्ञ भी संभालना है, दोनों संभालना है। 50-50% ट्रस्टी बनना है, वो है त्याग। न सिर्फ स्थूल धन साधन संपत्ति संबंध संपर्क, न सिर्फ लौकिक गुण कला विशेषताएं, लेकिन अलौकिक प्राप्तियां जो बाबा के बनने के बाद जो सुख मिला, आनंद मिला, शांति मिली, पवित्रता आई, जो आत्मा में उमंग उत्साह शक्ति भरी, दिव्य बुद्धि मिली, ये अलौकिक प्राप्तियां भी कितनी बांटते। जैसे बाबा ने कहा ना, खुशी बांटो। ये त्याग बाबा ने हमें बहुत कुछ दिया, दूसरों को देना। ये है दूसरा स्टेप त्याग का। और तीसरा कि ये सब कुछ लगाने के बाद भी, लगाते हुए भी निमित्त भाव में रहना, अभिमान में नहीं आना, प्रचार नहीं करना, महिमा नहीं चाहना, उसका रिटर्न नहीं चाहना, भल दूसरों को मिलता हुआ देखेंगे और सोच आपको होगा कि उसको दे रहे हैं, मैं भी तो ऐसा उपयोगी सहयोगी बाबा का मददगार अनन्य हूं, परंतु नहीं, वो चाहना नहीं। बाबा इसको कहते हैं त्याग का भी त्याग। हमने इतना किया ये सोच भी नहीं, हमारे पास था ही, बाबा नहीं मिलते तो कहीं और लगता, अच्छा है बाबा मिले, सही मार्ग पर लगा, हमारा भाग्य तो बन गया, भगवान की बैंक में हमारा तो जमा हो ही गया, और ईश्वरीय परिवार भी पहचानता है कि कौन सही त्यागी है, कौन निमित्त भाव वाले हैं, कौन कितने बनावट दिखावट वाले हैं ईश्वरीय परिवार भी समझता है, इसलिए हमें सोचने की जरूरत ही नहीं। इसलिए दो चीज, सफल करना और जमा होना, दो चीज सेवा में लगाया, सफल किया माना सही कार्य में लगा, पर जमा निमित्त भाव से ही होगा। सफल करने के बाद निमित्त भाव नहीं रहा, उसका रिटर्न चाहा, प्रचार प्रसार किया, शो किया, तो वो जमा में से माइनस होता है। तो ये तीन स्टेप है। ब्रह्मा बाबा ने तो बाबा की मुरली पढ़ते हैं ना, अभी भी 18 जनवरी 76 की मुरली थी कि बाप अव्यक्त क्यों हुए, एक दो मास की ही कोई रिवाइज मुरली में ही था, अव्यक्त वाणी में, कि बाबा के अव्यक्त होने से लोगों को जो गलत फहमी होती थी ना कि ये ब्रह्मा कुमारियां इनके दादा को ही भगवान समझती है, ये गलत फहमी खत्म हुई। क्योंकि जब तक बाबा साकार में थे लोगों को ये ही, कितना भी हम कहते भी थे तो भी लोग यही मानते थे कि ये इनके दादा को भगवान समझती है, इस पर ही आधारित है। तो बाबा ने कहा ब्रह्मा के अव्यक्त होने के बाद ये गलत फहमी खत्म हुई कि वास्तव में ये संस्था यज्ञ ब्रह्मा कुमारियां किसके आधार पर चल रहे हैं। बाबा का अव्यक्त होना माना जैसे सूर्य का या चंद्रमा का अस्त होना, सितारों को प्रत्यक्ष करना माना बच्चों को विश्व के सामने लाना, माना संपूर्ण बनने के बाद भी कितना त्याग। इसलिए ब्रह्मा बाबा के त्याग के लिए तो यही गीत हम सब गाते हैं कि अपने आप सभी कुछ करके अपने आप छिपाया, अपने आप खुद ने ही समझकर शिव बाबा ने इशारे दिए, ज्ञान दिया, कोई समझाने वाला नहीं था, अपने आप समझकर अपने आप सभी कुछ करके सब कुछ तन मन धन मन वचन कर्म हर प्रकार से सब कुछ करके खुद ने ही खुद को छिपाए, बहुत बड़ी चीज है। खुद ने ही खुद को छिपाए, इसलिए बाबा ने कहा कि ये थोड़ा बहुत कुछ बाबा मिलन के लिए, पढ़ाई के लिए, स्व उन्नति के लिए थोड़ा भी कुछ हम सहते हैं, समाते हैं, त्याग करते हैं वो तो अच्छी बात है, लेकिन बाबा त्याग हमसे कौन सा चाहते। और सेवा, तपस्या की बात पहले मैंने की, उसके लिए जरूरी त्याग, माना अंदर से एक ही चीज, बाबा माना बाबा बस, ज्ञान माना ज्ञान, दो चीज दो मन दो इच्छा नहीं हो चल सकती, तो त्याग नहीं होगा। जो इस ब्राह्मण जीवन को, योगी तपस्वी जीवन को शोभा न दे, ऐसी हर बात को छोड़ना, त्याग करना। उसके लिए खुद ही खुद को समझाना है, खुद ही साइलेंस में बैठ के अपने आप से बात करनी, वैराग्य उत्पन्न करना। और सेवा, हमारी सेवा से बाबा भी संतुष्ट है और बाकी ही बाबा के बच्चे दिन रात तन मन धन से, मन वचन कर्म से सेवा में लगे रहते हैं। पर अब समय अनुसार कौन सी सेवा बाबा हमसे चाहते हैं? ब्रह्मा बाबा ने कैसी सेवा की? सिखाया, समझाया, हिम्मत भरा, तैयार किया, ब्राह्मण बनाया, ब्राह्मणों को सिखाकर समान बनाते हुए उनको निमित्त बनाते गए, खुद संपूर्णता के लिए उपराम होते गए। माना अपने आप को भी बनाया संपूर्ण। बाबा ने ये नहीं कहा सेवा में बहुत व्यस्त था तो खुद को संपूर्ण बनाने का फुर्सत ही नहीं रही, नहीं। और ये भी नहीं कि खुद को बनाने के पुरुषार्थ में लगा रहा तो आप समान कोई तैयारी नहीं हुए या किए, वो भी नहीं। अनेकों को आप समान बनाया, खुद की तपस्या को भी पावरफुल करते गए, दूसरों को निमित्त बनाते गए, खुद संपन्न होते गए। अब सेवा जो बाबा को चाहिए, जो हम सबको पता है, चलन और चेहरे से सेवा, मनसा सेवा, जीवन से सेवा। जब भी देखे, जहां भी देखे, हमसे सेवा, जो भी मिले, जब भी मिले, प्राप्ति का अनुभव करे हर आत्मा। ये सूक्ष्म रूहानी अलौकिक सेवा, बाकी सब तो हम करते ही है, धन लगाना, साधन लगाना, बुद्धि लगाना, कला लगाना, वाचा से ज्ञान देना, ये तो हम कर ही रहे हैं और अंत तक करना भी है। इसी से बेहद का परिवार बना है, वो करना भी हमारा सफल ही रहा है। पर अब संगम युग के अंतिम चरण में जब हम पहुंच गए हैं और अब स्वरूप बदल रहा है, ज्यादा अलौकिक, ज्यादा अव्यक्त, ज्यादा दिव्य, अब वो स्वरूप बनता जा रहा है समय अनुसार, तो हमें भी अब उस प्रकार की सेवा हम कर सके, दृष्टि से, वाइब्रेशन से, सूक्ष्म भाव से, भावना से, चेहरे चलन। और इस वर्ष बाबा ने हम ब्राह्मण बच्चों से जो विशेष सेवा चाही है, तीन चार बातें बाबा ने बताई है। एक तो बाबा ने ये कहा है कि एक दो के जैसे सेवा में साथी बनकर मिलकर सेवा करते हैं, कितने बड़े बड़े प्रोग्राम हर एक सेंटर जोन करते हैं, ऐसे एक दो के साथी बनकर एक भी ब्राह्मण कमजोर न रहे उसमें साथी बनो। एक दो के संग से हम अटेंशन नहीं रखते हैं तो हम कई बार एक दो के संग से कमजोर बन जाते हैं गलत बातें सीखकर। पर बाबा ने कहा है कि अब खुद भी इतने शक्तिशाली यथार्थ कि एक दो में एक दो को साथ देकर साथियों की कमजोरी मिटाओ, कमजोर को शक्तिशाली बनाओ। दूसरा बाबा ने ये कहा कि बाप समान बनने की लहर फैलाओ, लहर फैलाओ, उमंग उत्साह भरो। सिर्फ ब्राह्मण बनना, सिर्फ ब्रह्मा कुमार कुमारी बनना, सिर्फ पुराने सीनियर सर्विसेबल अनन्य महारथी, ये नहीं, इससे भी आगे बाप समान बनने की लहर फैलाओ। हम सर्विसेबल कई बने हैं, महारथी बने हैं, अनन्य बने हैं, निमित्त बने हैं, पुराने हैं, पर अब बाबा ने कहा है बाप समान बनने की लहर फैला। बाबा जैसा त्याग, बाबा जैसी तपस्या, बाबा जैसी लगन, बाबा जैसा निश्चय, बाबा जैसी सेवा, बाप समान बनने के लिए। और एक बाबा ने कहा कि हरेक सेंटर देखे कि हरेक ब्राह्मण वारिस क्वालिटी बने, वारिस क्वालिटी की बात बाबा करते हैं तो हम ढूंढने लगते हैं कि हमारे क्लास में से कौन बन सकते हैं। ढूंढना थोड़ी है, खुद को बनना है। हम सोचते हैं किसको बनाए, अरे खुद को बनाना है वारिस क्वालिटी, मुझे ही वारिस क्वालिटी बनना है। और कई मुरलियों में बाबा ने उनके क्वालिफिकेशंस भी बताए हैं किसको वारिस कह सकते हैं। जो खुद बाबा का वारिस बने और खुद बाबा को अपना वारिस बनाए, सिंपल डेफिनेशन। पर माना क्वालिटी बाबा चाहते हैं। हर ब्राह्मण बच्चों संख्या बन गई, 9 लाख ब्राह्मण हो गए, इतनी जो सेवा की मेहनत की बाबा के सभी बच्चों ने, तो इससे बेहद का परिवार बन गया, विश्व में हम फैल गए, दुनिया में हम छा गए, सबकी नजर में हम आ गए। अब बाबा को चाहिए कि जो बाबा के बच्चे बने हैं वो वारिस क्वालिटी बने, माना पूरा भगवान से पूरी प्राप्ति करें और खुद पूरा भगवान को उपयोग में आ जाए, वो है वारिस। ये सेवा है अभी। तो प्रत्यक्षता, बाबा की प्रत्यक्षता जो हमारा एकमात्र लक्ष्य है अभी सेवा के पीछे, कि जिस बाबा ने हमें दुनिया के आगे प्रत्यक्ष किया है उस बाबा को हमें दुनिया के आगे प्रत्यक्ष करना है। द्वापर युग से जो बाबा भक्ति में भी भगवान खुद का भी साक्षात्कार कराते रहे, हमारे भी देवताई स्वरूप का बाबा ही साक्षात्कार कराते रहे, है ना। उस समय हम तो देवता की स्थिति में थे ही नहीं ना, पर देवताओं को मानने वाले भजने वालों को देवता रूप का साक्षात्कार कराने वाला तो बाबा था ना। अब हमारा कर्तव्य है कि हम अपने देवताई स्थिति का भी साक्षात्कार कराएं और अपने से बाप का भी साक्षात्कार कराएं। ये जो हमारा लास्ट कर्तव्य रहा हुआ है वो अब हमारी सेवा है। उसके लिए जितना अंतर्मुख होना पड़े, तपस्वी बनना पड़े, साइलेंस में जाना पड़े, उसके लिए जो कुछ करना पड़े खुद सोचे, खुद उसका प्लान बनाए, तभी वो तपस्या का तेज बल अनुभव में आएगा। तो बाबा ने जो हम सबको कहा है कि कम से कम ब्रह्मा बाप समान त्याग तपस्या सेवा में फॉलो करके बनो, तैयार हो, इस पर आप भी सोचिए और गहराई से, और प्रैक्टिकली हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि सीजन पूरी होने आ रही है, आगे 6 मास, इन सब बातों को प्रैक्टिकल करने के लिए हमें मिलते हैं। ये 6 मास बाबा ने जो भी मुरलियां चलाई अव्यक्त मिलन की और जो बातें हमें कही है, अब 6 मास का पीरियड, अब कितना मास हमारे लिए है क्या है वो तो हर एक का अपना रोल है, पर कहने के हिसाब से मैं तो कह रही हूं कि अब अप्रैल से सितंबर तक फिर मौका है कि हम हर मुरली को रिवाइज करके सार निकाल के क्या प्रैक्टिकल करके हमें दिखाना है जो बाबा ने कहा है, बाबा ने हमसे चाहा है, वो करने का पीरियड अब आ रहा है। तो हर एक खुद उसके लिए कुछ प्लान बना के मधुबन से जाएंगे। ओम शांति।
ओम।
ओम शांति। जिन भाई बहनों ने सौगात नहीं ली है वे कृपया अभी उठकर कॉन्फ्रेंस हॉल पहुंचेंगे। आदरणीय दादियां यज्ञ की तरफ से आप सभी को सौगात देंगी। जिन भाई बहनों ने सौगात नहीं ली है वे कृपया उठकर कॉन्फ्रेंस हॉल पहुंचे, वहां आपको यज्ञ की सौगात दी जाएगी। और अभी महाराष्ट्र और नेपाल के भाई बहन उठेंगे, भोजन पर जाएंगे और भोजन करके तुरंत आएंगे, क्योंकि आदरणीय दादी जी दादी जानकी जी आएंगे, योग भी कराएंगे और क्लास भी कराएंगे। महाराष्ट्र और नेपाल के भाई बहन भोजन पर जाएं और भोजन करके पुनः पहुंचे, योग करेंगे, आदरणीय दादी जी योग भी कराएंगी और क्लास भी कराएंगी। ओम शांति। अभी बहुत शांति से उठे, अभी कमेंट्री से योग हो रहा है। आदरणीय गीता दीदी जी कमेंट्री से योग भी करा रही हैं। बहुत शांति रखे, कोई भी आवाज नहीं करेगा।
Yeah।
स्वयं में। एकाग्र हो जाए, अपनी पूरी चेतना को स्वयं के प्रति केंद्रित करें। आसपास की सभी व्यक्तियों परिस्थितियों से न्यारे होकर मुझे स्वयं में स्थित होना है। असली शुद्ध शांत सत्य स्वरूप चैतन्य शक्ति दिव्य ज्योति शरीर रूपी गुफा में चमकता हुआ चैतन्य सितारा अब ये शरीर रूपी आवरण ट्रांसपेरेंट हो गया है। प्रकाश के कार्ब में मैं प्रकाश बिंदु आत्मा
अव्यक्त वतनवासी। अव्यक्त फरिश्ता, लाइट के आकार में ज्योति बिंदु, पॉइंट ऑफ लाइट एंड माइट, अव्यक्त वतन में वतनवासी बाप दादा के संग व्यक्त वतन से ही अव्यक्त बाप दादा के संग विश्व के ग्लोब को देख रहे अव्यक्त फरिश्ता बन अलौकिक अनुभूतियां करवा रही
खुशियों से भरा।